صفحہ نمبر 453، صفدر محمود اپنے مضمون علامہ اقبال کا گوشوارہ آمدنی انکم ٹیکس کے ریکارڈ کی روشنی میں تحریر کرتے ہیں۔ اس آمدنی کے علاوہ ان برسوں کے گوشواروں سے کچھ اور دلچسپ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، مثلا یہ کہ مالی سال 1922-23 میں علامہ اقبال نے اپنی آمدنی میں 145 روپے سود بھی لکھا۔ اس سود کی نوعیت جانے کیا ہے، کیونکہ اسے واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ تحقیق کرنے پر کئی بزرگوں نے صرف اتنا بتایا کہ اس دور میں بینکوں کے اکاؤنٹ پر سود ملتا تھا، جو آج کل بھی ملتا ہے۔ البتہ قانون کے مطابق جو بینکوں سے سود وصول نہیں کیا جاتا تھا، حکومت اس رقم سے مشنری اداروں اور عیسائیت کا پرچار کا کام لیتی تھی۔ اس لیے بہت سے لوگ اس صورتحال سے بچنے کے لیے سود وصول کر لیتے تھے اور غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بہرحال علامہ اقبال کے زمن میں صحیح بات کا علم نہیں ہو سکا۔ ان سالوں میں کار، پٹرول اور ڈرائیور کا ذکر پہلی بار مالی سال 1924-25 کے گوشواروں میں آتا ہے۔ گویا علامہ اقبال کی مالی حالت نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ وہ 1924 میں کار خرید لیں۔ سب سے پہلے صرف بانگے درا سے مالی سال 1924-25 میں سے 5500 روپے آمدنی ہوئی، اور اسی سال علامہ اقبال نے کار بھی خریدی۔ صفدر محمود کے اندازے کے مطابق آج کے روپے کی قیمت سامنے رکھتے ہوئے متذکرہ سالوں میں اقبال کی آمدنی آج کل کی آمدنی سے کم از کم 8 گنا تھی، اور اس حساب کے ان کی سالانہ آمدنی خاصی مقبول تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آمدنی پیدا کرنے کے لیے جو تگ و دو اقبال کو پیشہ وکالت اور مختلف یونیورسٹیوں کے پرچے بنانے یا دیکھنے میں کرنی پڑتی، اس پر ان کا کتنا وقت صرف ہوتا تھا، اور انہی لٹریری امور کی طرف توجہ دینے کے لیے کس قدر فرصت ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اقبال پر اخراجات کا بوجھ کس نوعیت کا تھا۔ وکالت چلانے کی خاطر ان کے لیے اپنا معاشی سٹیٹس برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ دو بیویاں اور اولاد رکھتے تھے، تیسری بیوی کو جس سے علیحدگی ہو چکی تھی ایک مقررہ رقم ہر مہینے بھیجتے تھے۔ بڑے بھائی کی ریٹائرمنٹ پر جنہوں نے اپنی ملازمت کا اندو خطہ ان کی تعلیم پر خرچ کر دیا تھا، ان کی اولاد کے اخراجات کچھ حد تک برداشت کرتے تھے، اور ماں باپ کو بھی ایک معقول رقم ہر ماہ ارسال کرتے تھے۔ ان حالات میں ان کے لیے اپنے تمام تصنیفی عزائم کو عملی جامعہ پہنانا واقعی مشکل تھا، اور غالباً فکر معاش سے نجات حاصل کرنے یا اپنی توجہ زیادہ تر لٹریری مشاغل کی طرف مبذول کرانے کی خاطر ان کی نگاہیں بار بار حیدرآباد دکن کی طرف اٹھتی تھیں۔ اقبال دو مرتبہ حیدرآباد گئے، پہلی بار 1910 میں اور دوسری بار 1929 میں، لیکن سر سید عبد الواحد معینی کا خیال ہے کہ انہوں نے 1920 یا 1921 میں بھی حیدرآباد کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کا ذکر احمد محی الدین رضوی، چیف سیکرٹری حکومت نظام، اور نواب فضل نواز جنگ، صدر المحام مالگزاری نے معینی صاحب کے سامنے بڑے وثوق کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال وہ تحریر کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران اقبال کس کے مہمان رہے اور کن کن اصحاب سے ملاقاتیں کی، اس کے متعلق انہی معلومات فراہم نہیں ہو سکیں۔ پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ عمر قابل ذکر ہے کہ بعض احباب کو اس میں شبہ ہے کہ اقبال 1920 یا 1921 میں واقعی حیدرآباد گئے تھے یا نہیں۔ اقبال کے اس سفر حیدرآباد کے متعلق راقم کو کسی قسم کا کوئی تحریری ثبوت نہیں مل سکا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سر سید علی امام ریاست کے وزیر اعظم تھے، اور سر اکبر حیدری اور مہاراجہ کشن پرساد بھی حیدرآباد ہی میں موجود تھے۔ خیر، ہمیں اس بحث سے کوئی سرو کار نہیں کہ اقبال اپنی زندگی میں دو ہی بار حیدرآباد گئے یا تین بار۔ حیات اقبال کے چند پہلو جرمن شاعر گوٹے کی زندگی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا گوٹے نے اقبال کی طرح قانون کا امتحان پاس کیا اور دنیا دارانہ زندگی میں بڑھنے کے لیے فرینک فورٹ کے شہر میں پریکٹس شروع کی، لیکن گوٹے پریکٹس سے بیزار تھا اور اسے ثانوی حیثیت دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لٹریری مشاغل جاری رکھنے کے لیے کسی سرپرست کی تلاش میں سرگداں رہا۔ بلاخر 1775 میں اسے ڈیوڈ کارل آکسٹ نے اپنی ریاست ویمر میں تعلیمی مشیر مقرر کر دیا، اور یوں گوٹے نے بقایا زندگی ریاست ویمر ہی میں بسر کی، یہاں فکر معاش سے آزاد ہو کر اسے ریاست کے امور کی دیکھ بھال کے علاوہ اپنے لٹریری مقاصد کی تکمیل کے لیے خاصی فرصت مل جاتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال بھی پیشہ وکالت میں جو تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس سے بیزار تھے، اور نظام حیدرآباد کی سرپرستی میں فکر معاش سے نجات حاصل کر کے اپنے لٹریری मकासद की तकमील के लिए फुर्सत के आरजूमंद थे। इसी सबब इन्हीं जब भी मौका मिलता था हैदराबाद के लिए अपनी खिदमात पेश करते थे। मसलन अपने एक खत मुहर्रा 28 दिसंबर 1926 बनाम महाराजा किशन प्रसाद में तहरीर करते हैं, अगर सरकार के असर रसूख की वजह से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हिंदुस्तानी रूसा और सरकार अंग्रेज़ी के तलुकात के मसला को अपना सवाल बना ले तो हैरत अंगेज नतज पैदा होने की तवक्को है। रॉयल कमीशन हिंदुस्तान में अनकरीब आने वाली है। इस मसले की छानबीन के लिए बैन अवी कानून जानने वालों की एक जमात तैयार करनी चाहिए जो कमीशन के सामने शहादत देने वालों को इस मसला के माला व मालिया के में पूरे तौर पर तैयार करें। अगर इस मसले में इकबाल की ज़रूरत हो तो वो भी अपनी बसात के मुताबिक हाजिर है। इंशाल्लाह सरकार वाला इसे खिदमत में कासर ना पाएंगे, मगर ये मसला नहायत ज़रूरी है। इसकी तरफ फौरी तवज्जो होना चाहिए और इसके हल का तरीका भी यही है जो मैंने ऊपर अर्ज किया है। बरा रुके मुतल्लक जो तरीके अख्तियार किया गया था मेरी नाकस राय में ये सही ना था। सफ़ा नंबर 456। बाद में 1931 में जब इकबाल दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इंग्लिस्तान गए तो भी हैदराबाद के अमूर में इन्होंने ख़ास तौर पर दिलचस्पी ली। बकौल बहादुर यार जंग व कॉन्फ्रेंस के दौरान निजी तौर पर वज़ीर हिंद और इंग्लिस्तान के दीगर मुदब्बरीन से हैदराबाद की आइनी पोजीशन के मुतल्लिक बातचीत करते रहे और इन्हीं दलाइल से कायल कर लिया कि हैदराबाद को इसके मफजूदा इलाकों की वापसी के साथ डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी आज़ाद हसीयत में कॉमनवेल्थ की तकवीयत का बायस बन सके। मगर वफ्द हैदराबाद के सरबरा सर अकबर हैदरी ने इसकी मुखालफत इस बिना पर की कि ऐसे इकदाम से हिंदू जमातें एजिटेशन करेंगी और मुमकिन है दूसरी रियासतें भी ऐसे ही मुतलबात पेश कर दें, लिहाजा ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। इसकी ताइद अजीम हुसैन के बयान से भी होती है। वो तहरीर करते हैं कि हर चंद के इनके वालिद सर फजल हुसैन ने वासराय को ख़ास तौर पर कहकर इकबाल को दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए नामजद कराया था, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सर अकबर हैदरी से झगड़ पड़े। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद इकबाल को हैदराबाद में मुस्तकिल क्याम की ख्वाहिश पूरी ना हुई। ताहम ये भी हकीकत है कि इकबाल के सिफारशी खत लेकर लोग हैदराबाद जाते और आला मुलाजमतें या वज़ाइफ हासिल कर लेते थे। मसलन जोश मिली आबादी के लिए महाराजा किशन प्रसाद को तहरीर किया। ये खत शबीर हुसैन साहब जोश मिली आबादी लखनऊ की मुआरफी के लिए लिखता हूँ। ये नौजवान नहायत काबिल और होनहार शायर हैं। मैंने इनकी तसनीफ़ को हमेशा दिलचस्पी से पढ़ा है। इस खुदादाद काबिलियत के अलावा लखनऊ के एक मुअज्ज़ज़ ख़ानदान से हैं जो असर रसूख के साथ लिटरेरी शोहरत भी रखता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इनके हाल पर नज़र अनायत फरमाएंगे और अगर इनको किसी अमर में सरकार आली के मशवरे की ज़रूरत होगी तो इससे दरेग ना फरमाएंगे। सरकार वाला की शरफा परवरी के इतमाद पर इस दरख्वास्त की जुड़त की गई है, मगर हैदराबाद इकबाल की अपनी इमली खदमात से क्यों महरूम रहा नज़र हैदर आबादी लिखते हैं। इस सवाल के जवाब में क्यास ये किया जाता है कि बाखबर और होशमंद अंग्रेज़ जिसके ज़राए मालूमात बहुत वसी और पशीदा होते थे और जिसने हैदराबाद में वकारुल मुलक मोसनुल मुलक जफर अली खान अब्दुल अलीम शरर और आखिर में अली इमाम को टिकने ना दिया, वो हैदराबाद में इकबाल जैसे ख़तरे को परवान चढ़ते नहीं देख सकता था। यह दुरुस्त है कि हैदराबाद आम रियासतों से मुख्तलिफ एक खासी वसी मुमलकत थी और दीगर देसी रियासतों के नवाबों और राजाओं के मुकाबले में निज़ाम की हसीयत बड़ी महत्तम बल शान और मतलक और नान की थी, लेकिन बाज़ ख़ास अमूर में निज़ाम अंग्रेज़ रेजिडेंट के मशवरे या इशारे के बगैर कुछ ना कर सकता था। इकबाल के बारे में नज़र हैदर आबादी के क्यास की तस्दीक एक और ज़रिए से भी होती है। 1929 में जब इकबाल हैदराबाद में पहली बार नवाब मीर उस्मान अली खान आसफ साबे की खिदमत में हाजिर हुए तो इस मुलाकात के बारे में निज़ाम ने जो फरमान शाही जारी किया इसका मोहतात लहजा तवज्जो के काबल है। मारा ई कदर या दस्त के तखमीना अरसाए रबा सदी गुज़िश्ता अस्त के यक बारा ई जा आमदा बूद मगर मलूम निस्त के आया ओ इस खुद ब अर्ज सैरो सिहात आमदा या बर्द दावत कैसे या बराए कार खास आमदा वहम ओ चंका बर्मा काल करदा बूद यानी नाम खुदोश दर किताब नोशता बूद हसब आदत मुताबक एटिकेट और इंट्रा वी दे युदा बोधियम व नतीजा कि माँ इस गुफ्त गोए ओ खुदाए करद कदीम ए के बूद ओ दर नजर माँ अज मजर तबका अहल सलाम आमद व ई हम अज तर्ज कलाम ओ बर्मा उविदा गश्त के ओ जज्बा खिदमत कौम मिल्लत खोश दर्द दिल मी दश्त व ई हम जाहिर शुद के ओ जबां अंग्रेजी रा खूब मी दनस्त व सफर यूरोप हम करदा बूद बरहाल शुमारे ओ दरमिया मशाहिर बरूने मुलक बूद ज्यादा इजा हवाल ओ माना बल हस्तीम। इस सिलसिले में सैयद शकील अहमद ने आंध्र प्रदेश के रियासती दफ्तर असनाद स्टेट आर्काइव्स हैदराबाद से हासिल करदा इकबाल से मुतलक कुछ मवाद इकबाल रिव्यू इकबाल अकैदमी हैदराबाद के समाही रसाले की खसूसी अशात अप्रैल ता जून 1984 में शाया किया है जिससे जाहिर होता है कि रियासती हकाम बल्कि खुद निज़ाम का इकबाल की तरफ जाविया नज़र क्या था। मसलन जब 1929 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की दावत पर इकबाल लेक्चर देने की खातर हैदराबाद पहुंचे तो इनके बेला विस्टा गेस्ट हाउस सरकारी मेहमान खाना में क्याम पर इतराज़ किया गया बल्कि लेक्चर के लिए टाउन हॉल के इस्तेमाल जैसी मामूली बात की इजाज़त भी निज़ाम ने हिचकिचाहट के साथ दी। फिर 1932 में नवाब भोपाल हमीदुल्ला खान ने निज़ाम को खत तहरीर किया कि इकबाल की माली इमदाद के लिए 1000 रुपया महाना वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। इतनी ऊंची सिफारिश के बावजूद हैदराबाद के हकाम और खुद निज़ाम ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि खुद नवाब भोपाल ये वजीफा क्यों नहीं दे देते। इसी तरह 1937 में इकबाल की अलालत के ज़माने में इन्हीं माली अमदाद देने से सियासी वजूहात की बिना पर इनकार कर दिया गया। इकबाल के बेला विस्टा गेस्ट हाउस में ठहराए जाने पर इतराज़ के बारे में सैयद शकील अहमद तहरीर करते हैं लामा इकबाल को सरकारी दारुल अज़ियाफ में ठहराने की निस्बत महकमा अदालत व कोतवाली व अमूर आमा और महकमा सियासत के दरमियान जो कार्रवाई चली है इसके बाद दिलचस्प व अबरत अंगेज पहलू भी हैं जिनसे इस बात का भी इजहार होता है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हुकूमत सरकार आली के बाद वजीर और अहदेदार डॉक्टर इकबाल को सरकारी मेहमान बहनाने या इनका सरकारी सतह पर इस्तकबाल करने से मुत्तफिक नहीं थे। खुद निज़ाम हैदराबाद ने भी दबे लफ्ज़ों में बिलावास्ता में डॉक्टर इकबाल के ठहराए जाने पर अपनी नापसंदगी का इजहार किया है लेकिन गलबन महाराजा किशन प्रसाद की शख्सी दिलचस्पी की वजह या इस मौके पर अपनी अदम मौजूदगी की वजह से वो यानी निज़ाम कुछ ज़्यादा मुताहलत नहीं कर सके। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि इकबाल की हैदराबाद आमद के दिन निज़ाम कलकत्ते में थे इसलिए मंजूरी की तवक्को पर या बादल नाख्वास्ता इकबाल के क्याम का इंतज़ाम महाराजा किशन प्रसाद के हुक्म पर बेला विस्टा गेस्ट हाउस में कर दिया गया। अलबत्ता निज़ाम की वापसी पर जब इनकी खिदमत में ये अर्जदाश्त पेश की गई तो उन्होंने जो फरमान जारी किया इसका लुबे लहजा मुलाहजा हो बाज़ मुअज़्ज़ज़ अशख़ास के बिलावास्ता में किसी को ना ठहराया जाए इसकी इजाज़त सदर आज़म को दी जाती है जो इनके स्वाबदीद पर छोड़ा गया है। रहा मामूली हसीियत के अशखास वो दूसरे गेस्ट हाउस में ठहराए जा सकते हैं। इकबाल के क्याम हैदराबाद का मसला हल हो जाने के बाद इनके लेक्चर के लिए टाउन हॉल के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए भी तहरीरी अर्जदाश्त सदर आज़म की जानब से निज़ाम की खिदमत में गुजारी गई और गलबन टेलीफोन पर इनकी ज़ुबानी मंजूरी के बाद ही इकबाल के लेक्चर हुए। इसी तरह 7 जनवरी 1938 को इकबाल की ज़िंदगी में यौम इकबाल मनाने के लिए जब मुस्लिम कल्चरल सोसाइटी ने निज़ाम से टाउन हॉल के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी तो निज़ाम ने ये फरमान जारी किया इस वक्त इजाज़त दी जाती है मगर आइंदा से टाउन हॉल के इस्तेमाल की इजाज़त खास हालात के तहत दी जाएगी ना कि ऐसे वैसे काम के लिए। यह हकीकत है कि इकबाल ने शख्सी तौर पर अपने लिए कभी किसी से कोई अमदाद नहीं चाही, अलबत्ता इनके दोस्तों और मदाहों का एक हल्का ज़रूर इनकी माली अमदाद के लिए कोशां रहा। सफ़ा नंबर 460, जिसमें बवजह कामयाबी नहीं हुई। निज़ाम से इकबाल की माली अमदाद के सिलसिले में नवाब भोपाल की तहरीक के बारे में सैयद शकील अहमद तहरीर करते हैं कि नवाब भोपाल का एक अंग्रेज़ी खत मोरखा 4 मई 1932 बनाम निज़ाम रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस खत में निज़ाम को बरादरम मोहतरम व मुकर्रम के अरकाब से याद किया गया, जिसका मतन मुख्तसर ये है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत के फरमारवा होने की हैसियत से निज़ाम ने उलूमे फ़नून की जिस फ्याजी के साथ सरपरस्ती की है, इसके तमाम मुल्क और खसूसन मिल्लत इस्लामिया ममनून एहसान हैं। और दुनियाए अदब में एक शायर और फलसफी होने की हैसियत से इकबाल को जो मर्तबा हासिल है, वो इन पर बखूबी अय्या है। इकबाल की शायरी ने मुसलमान हिंद के नाम को तमाम आलम में रोशन किया और वह नहायत मुस्तदी के साथ प्याम इस्लाम की मगरबी ममालक में तर्जमानी कर रहे हैं। लेकिन इनकी माली मुश्किलात इनकी अदबी जद्दोजहद में सख्त मज़ाहम हो रही है, इसलिए अगर इनको इन मुश्किलात से निजात दिलवा दी जाए तो वो अपने अदबी मशागल में हमा तन मसरूफ हो सकते हैं। इकबाल को अपने ख़ानदान की परवरिश के लिए माहाना 1000 रुपये की आमदनी फराहम हो जाए तो वो माली मुश्किलात से निजात पा लेंगे, क्योंकि निज़ाम ने ऐसे मामलात में हमेशा दिलचस्पी का इजहार किया है। इसलिए इनके रूबरू तजवीज़ पेश की जाती है कि अगर इकबाल को इस हद तक माली अमदाद इनकी तरफ से दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाए तो वह तमाम लोग जो मशरकी अदब और इस्लामी तलीमात व फलसफा से दिलचस्पी रखते हैं हमेशा हमेशा के लिए निज़ाम और रियासत हैदराबाद के ममनून एहसान रहेंगे। निज़ाम ने यह खत अपने वज़रा की राय मालूम करने की खातर बज़रिया गश्त इन्हीं भिजवाया। इस ज़माने में मेहदी यार जंग सदर मल महामी सियासियात के उहदे पर फायज थे। उन्होंने इस कार्रवाई का पर तबसरा करते हुए तहरीर किया। सफ़ा नंबर 461, ये अमर के सर मोहम्मद इकबाल अच्छे शायर हैं, इसके बारे में फ़न शायरी के माहिरों में इख्तलाफ है। अगर फ़र्ज़ किया जाए कि वह अच्छे शायर हैं तब भी ये वजह इनको 1000 रुपया महवार देने के लिए काफ़ी नहीं है। नवाब साहब भोपाल जो इनकी सिफारिश करते हैं वो खुद इनको क्यों नहीं कुछ देते। असूलन हैदराबाद का रुपया स्टेट से बाहर ना जाना चाहिए जब तक कोई वाकई ज़रूरत ना हो, बल्कि अब हम को इस नज़रिए से इस मसले को देखना है कि इनफरादी तौर पर जो लोगों को महवारें मुल्क के बाहर दी जा रही हैं वो किस मसहलत पर मबनी हैं या किस खिदमत के सिला में दी जाती हैं या ऐसी कौन सी सियासी अगराज व्यवस्था हैं और ऐसे तबसरे के बाद गैर ज़रूरी महवारों को तख़फीफ कर देना चाहिए। इस राय से वज़रा की कौंसल के अराकीन ने इतफाक़ किया, चुनाचा तय हुआ कि रियासत का रुपया एक गैर मुल्की को नहीं देना चाहिए। हालांकि इकबाल जैसे मिल्लत इस्लामिया के खादम को किसी इलाके के साथ पाबंद करना मुनासिब ना था, लेकिन दफ्तर शाही कैद मुकाम में पाबा गुल रहा और बिल आखिर निज़ाम ने 3 जनवरी 1933 को नवाब भोपाल के खत का जवाब नफी में दे दिया। इसी तरह 1937 में इकबाल की अदालत के एजाम में सर अकबर हैदरी ने एक बार फिर इकबाल की माली इमदाद के लिए कोशिश की, लेकिन इस मरतबा इमदाद के मसले में इकबाल की ख्यालात के बारे में तहकीकात की गई और इसलिए इनकार कर दिया गया कि वो मगरब के सख्त मुखालफ थे और इस ज़मन में इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार पश्चा बाइद करदा अक़वाम शरक में बड़ी शिद्दत के साथ किया था। सो गैर मुल्की होने और मगरबी इस्तेमार की मुखालफत करने की बिना पर इकबाल के ज़माना हयात में कोई पेंशन हैदराबाद से जारी ना हो सकी। शायद इकबाल को भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इस बात का एहसास हो गया था और ऐन मुमकिन है कि इस पस मंज़र में उन्होंने जनवरी 1938 में सर अकबर हैदरी के निज़ाम के तोशे खाना से 1000 रुपये की रकम का चेक अरसाल करने पर वो गैर फ़ानी अशार तहरीर किए हों जो अब अरमगान हिजाज का हिस्सा हैं और जिनकी वजह से बज़ाहिर सर अकबर हैदरी लेकिन दर हकीकत निज़ाम की शख्सियत मुसलमानों में मुशतबा होकर रह गई। गोटे का सर परस्त डेवक कार्ल आगस्ट एक खुद मुख्तियार फरमा रवा था और इसकी रियासत वैमर एक आज़ाद जर्मन रियासत थी। इसलिए गोटे जब इसका तलीमी मशीर मुकर्रर हुआ तो फिक्रे माश से आज़ाद हो गया और इसे अपने लिटरेरी मकासद की तकमील के लिए फुर्सत मिल गई। लेकिन निज़ाम मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार मुस्लिम फरमा रवा ना था और ना हैदराबाद ही सही मानों में मकतदर मुस्लिम ममालकत थी। इसलिए जो कुछ इकबाल चाहते थे वो ना हो सका, और अगर हो गया होता तो मिरासे इकबाल के मामले में आज आलम इस्लाम अमीर तर होता। मुख्तसर ये कि इकबाल का बेशतर वक़्त ऐसे मामलात की नज़र होता रहा जो इन्हीं और इनके ख़ानदान के अफराद को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकें। तहकीक व तसनीफ की खातर फुर्सत के लिए वो तमाम उम्र तरसते रहे और शेर शबे बेदारी के आलम में या फिर तातील के दिनों में कहते थे। बाज़ औक़ात मज़ामीन सैलाब की तरह उमड़ कर आते और अल्फाज में ढले हुए अशार का तूफान बपा हो जाता, जैसे किसी मछेरे के जाल में बहुत सारी मछलियां आ फंसती हों और वह इस कश्मकश में हो के किसको पकड़े और किसको जाने दे। आमद से बेशतर अमूमन शदीद पेजो ताप की कैफियत में से गुजरते, चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता, बिस्तर पर करवटें बदलते, कभी उठकर बैठ जाते और कभी घंटों में घुटनों में सर दे लेते। अशार बे आज में लिख चुकने के बाद रफ्ता रफ्ता सुकून के आसार नमूदार हो जाते और इत्मीनान से सो जाते। सफा नंबर 463 माखज बाब 11 नंबर 1 मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल इस तुफैल अहमद सफात 384-386। नंबर 2 सैकड़ों हिंदी मुस्लिम शहदा की कब्रें आज भी तुर्की के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में मौजूद हैं। नंबर 3 इकबाल इज अतिया बेगम अंग्रेजी सफा 73। नंबर 4 अनवारे इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफा 156। नंबर 5 रुदाद दलेरडी एसोसिएशन लंदन 6 नवंबर 1931 बहवाला इनकलाब 21 नवंबर 1931 गुफ्तार इकबाल मरतबा मोहम्मद रफीक अफजल सफात 249-252। नंबर 6 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफा 23। नंबर 7 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 186-129। नंबर 8 इसरार खुदी की अशात से पहले मजमून अब्दुल मजीद सालक हफ्त रोज़ा कंदील 21 अप्रैल 1950 जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक सफात 84-85। इकबाल और अंजमन हमायत इस्लाम इज मोहम्मद हनीफ शाहिद सफात 85-86। नंबर 9 मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी सफ़ा 99 नीज देखिए सफ़ात 98-105-106। नंबर 10 इस जलसे में अब्दुल मजीद सालक मौजूद थे जिक्र इकबाल सफ़ात 84-85। नंबर 11 बयान गुलाम रसूल महर मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी सफ़ात 635। नंबर 12 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफ़ा 368। नंबर 13 रोजगार फ़कीर इज फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन जिल्द दोम सफ़ा 136। नंबर 14 जिक्र इकबाल सफ़ात 85-86। नंबर 15 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफ़ात 131-132। नंबर 16 कुलियात अकबर जिल्द दोम व सोम शाया करदा बजम अकबर कराची सफ़ा 421। नंबर 17 ये नज़म शेख इजाज़ अहमद के पास मौजूद है रोज़गार फ़कीर इज़ फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन सफ़ा 138। नंबर 18 रोज़गार फ़कीर इज़ फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन सफ़ात 162-146। नंबर 19 मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मोइनी सफ़ा 193। नंबर 20 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफ़ा 53। नंबर 21 खतूत इकबाल मरतबा रफ़ीउद्दीन हाशमी सफ़ा 208-210। नंबर 22 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफ़ा 26-28। 23 मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल सफा 388। नंबर 24 इंडिया 1926-27 पार्लियामेंट के लिए रिपोर्ट इज जे कोटमेन अंग्रेजी सफा 2 15 16। नंबर 25 जिक्र इकबाल सफा 102। नंबर 26 इंडियन नेशनल मूवमेंट की तारीख इज दी लोवट अंग्रेजी सफात 148-150। नंबर 27 शाद इकबाल मरतबा मुहियुद्दीन कादरी जोर सफा 3। नंबर 28 एजन सफा 38। नंबर 29 एजन सफात 42-43। नंबर 30 एजन सफात 46। नंबर 31 एजन सफात 61-68। नंबर 32 जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक सफा 87। बाकियात इकबाल मरतबा अब्दुल वहाद मोइनी सफा 106। नंबर 33 मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी सफात 124-125। नंबर 34 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफा 75। नंबर 35 मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहाद मोइनी सफात 191-192। नंबर 36 नजर इकबाल मरतबा मोहम्मद हनीफ शाहिद सफा 18। नंबर 37 मकातीब इकबाल बनाम नियाजुद्दीन खान सफा 9। नंबर 38 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 63-68। नंबर 39 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफा 71। नंबर 40 एजन सफात 73-74। नंबर 41 जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक सफात 90-91। नंबर 42 फलसफा अजम सफा 9। नंबर 43 एजन सफात 155-156-158। नंबर 44 एजन सफात 146-149। नंबर 45 जिक्र इकबाल सफा 46। नंबर 46 हवाला सूफी मार्च 1926 देखिए मजमून हयात इकबाल की गुमशुदा कुड़ियाँ इज अब्दुल्ला कुरैशी इकबाल मजल्ला बजम इकबाल अक्टूबर 1953 सफा 64। नंबर 47 मतालब इसरार रमूज सफा 5। नंबर 48 मकातीब इकबाल बनाम नियाजुद्दीन खान सफा 1। नंबर 49 शाद इकबाल मरतबा मुहियुद्दीन कादरी जोर सफा 102। नंबर 50 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 181-182। नंबर 51 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफात 46-47। नंबर 52 सहीफा इकबाल हिस्सा अव्वल सफात 15-17। नंबर 53 सहीफा 18। नंबर 54 अरमगान दक्कन बहादुर यार जंग अकादमी कराची सफा 40 अपनी तसनीफ नक्श इकबाल में तहरीर करते हैं कि मुझे अहमद मुहियुद्दीन रिजवी के बयान पर पूरा एतमाद है देखिए सफा 300-273। नंबर 55 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफात 206-207। नंबर 56 इकबाल और हैदराबाद इज नज़ीर हैदर आबादी सफात 1920। नंबर 57 फजल हुसैन अंग्रेजी सफात 319। नंबर 58 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफात 204-205। नंबर 59 इकबाल और हैदराबाद सफात 20। नंबर 60 निज़ाम गजट 4 मई 1929 रोज 5 जनशा इकबाल और बजम इकबाल हैदराबाद दक्कन इज अब्दुल रऊफ अरूज सफा 39। नंबर 61 सफात 10-14, 29-38, 28-42। रसाला मजकूर रिकॉर्ड से यह भी जाहिर है कि इकबाल के पसमानदगान की इमदाद के सिलसिला में कुछ वज़ाइफ जारी किए गए लेकिन शायद ये महज कागजी कार्रवाई थी क्योंकि राकम के इलम के मुताबिक नाबालगान के औलिया ने हैदराबाद से ऐसा कोई वजीफा हासिल नहीं किया। सफात 43-46 रसाला मजकूर मुलाहजा हो। सफा नंबर 467 बाब नंबर 12 कलमी हंगामा। मसनवी इसरारे खुदी की अशात पर वजूदी तसवुफ के हामी सूफियों रवायती सजादा नशीनों अहद तनजल की शायरी के दिलदादों और फरसूदा यूनानी फलसफा इश्तराक के पैराकारों की इकबाल और इसके हामियों के साथ जो कलमी जंग हुई वो 1915 के अवाखर से लेकर 1918 तक यानी तकरीबन 2.5 वर्ष तक जारी रही। इस कलमी हंगामे की पूरी तफसील इकबाल के किसी तहरीर करदा सवाने हयात में मिलती है ना इन कुतब में जो इकबाल और तसवुफ के मौजू पर लिखी गई। लेकिन हकीकत यह है कि इन रसालों में 200 मजामीन मुख्तलिफ अखबारों और रसालों में मसनवी इसरार खुदी की तारीफ या मुखालफत में वजूदी तसवुफ के हक में या खिलाफ और हाफज की हमायत या इनके नजरिया हयात की तरदीद में शाया हुए। मशाइख में इकबाल की मुखालफत में ख्वाजा हसन निजामी और इनके मुरीद सबसे आगे थे। इकबाल ने खुद इस बहस में पढ़कर कई मजामीन लिखे। इनके हामियों में मौलवी सराजुद्दीन पाल, एडवोकेट मौलाना अब्दुल अमादी, मौलाना जफर अली खान, मौलवी अलफ दीन वकील, मौलवी महमूद अली, अब्दुल रहमान बंजूरी वगैरह काबिल जिक्र हैं। बाद अदीबों ने अपने नाम मुखफ़ी रखे और कशाफ नकाद एक मुसलमान या मुस्लिम फ़िलासफ़र व तबी ऐसे फर्जी नामों के तहत मजामीन लिखते रहे। इस मौजू पर अभी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। अगर इन सब मजामीन को जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बन सकती है। बहरहाल इस सिलसिले में राकम के पेश नज़र अब्दुल्ला कुरैशी का तहरीर करदा एक मजमून है जो हयात इकबाल की गुमशुदा कड़ियाँ मारका इसरार खुदी के अनवान से इकबाल मुजल्ला बजम इकबाल में 2 किस्तों में शाया हुआ और इसी मजमून पर इन्हसार करते हुए गुलाम रसूल महर ने अपनी तसनीफ मतालब इसरार व रमूज का मुकदमा तरतीब दिया। इसके अलावा राकम ने अब्दुल्ला कुरैशी की एक और तसनीफ महासरीन इकबाल की नज़र में से ख्वाजा हसन निज़ामी और अकबर अलाबादी से मतलक अबवाब और इकबाल के मकतूबात से भी इस्तफादा किया है। इस बहस से मतलक इकबाल के 3 मजामून मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मोइनी में महफूज है और चौथा अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार में शामिल किया गया है। गुज़िश्ता सालों में अब्दुल्ला कुरैशी ने बड़ी मेहनत करके अखबारों और रसालों से इस मौजू पर मजीद मजामीन इकट्ठे किए हैं। चुनाचा ये बाब ज़्यादातर अब्दुल्ला कुरैशी की तहरीरों की बुनियाद पर या इनसे बिलमुशाफा गुफ्तगु की रोशनी में तरतीब दिया गया है। अब्दुल्ला कुरैशी की राय में लफ्ज़ खुदी का मफहूम मरवज्जा मानों से हटकर इकबाल के जहन में 1897 से वजूद था और इसकी ताइद में वो इस दौर में लिखी गई इनकी एक गज़ल का ये शेर पेश करते हैं। जो वफा पेशा समझता है खुदी को इमां जनती होगा फरिश्तों में नुमाया होगा। ये दुरुस्त है कि इब्तदाई दौर में भी कभी कभार इस इकबाल की झलकियाँ दिखाई दे जाती थी जिसका आफ्ताब कमाल अनकरीब उफक से उभरने वाला था, लेकिन बकौल खलीफा अब्दुल हकीम इस दौर की शायरी को इकबाल की शायरी की सुबह काजब समझना चाहिए जिसकी रोशनी तुलवे आफ्ताब का पेश खैमा होती है। हकीकत में वजूदी तसवुफ से इनहराफ का ऐलान इकबाल ने पहली बार 1914 में अंजमन हमायत इस्लाम के जलसे में अजमी तसवुफ और इस्लाम के मौजू पर खुतबा देते हुए कहा। उन्होंने फरमाया, इस यानी मरवज्जा तसवुफ को इस्लाम के सादा अकायद और अरबी रूह देने से कोई इलाका नहीं और इसका बुनियादी सितम यह है कि यह खुद ही को तबाह करता है। हालांकि खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो अफराद व अकवाम की ज़िंदगी की जामन और इंसानों को बुलंद तरीन मादी व रूहानी मदारज पर पहुँचाने की कफील है। तसवुफ के लिटरेचर में जहाँ कहीं खुद ही को मारने का जिक्र आया है वहाँ अवाम इसके मानी गुरूर व तकबर करते हैं जो जवाइल से है और इससे हर मुसलमान को इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मुतसफ़ीन ने यह लफज गरूर के मानी में इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एहसास ज़ात अना और मैं के मानी में इस्तेमाल किया है। इनका मकसद यह है कि इंसान अपने आप को मिटा दे, अपने नफस की नफीस करे, तब मार्फत की मंजिल पर फायज हो सकता है। हालांकि ये तसव्वुर बिल्कुल खिलाफ इस्लाम है। इस्लाम चाहता है कि हर इंसान की खुदी ना सिर्फ कायम रहे बल्कि इर्तका की मंजिलें तय करते हुए इस मकाम पर पहुंच जाए जो इसके लिए मुकद्दर है और जिससे बड़ा कोई मुकाम इंसानी तसव्वुर में नहीं आ सकता। इसी तकरीर के दौरान में इकबाल ने बताया कि इन्होंने इसरार खुदी के नाम से एक मसनवी तहरीर की है जो अजमी तसव्वुफ के इस तलस्सम को पाश पाश कर देगी जिसने मुसलमानों को अमल की कुव्वत से महरूम करके साकत व जामद कर रखा है। इसके बाद इसरार खुदी के बाद मकामात पढ़ कर सुनाए। 1915 के वस्त में मसनवी इसरार खुदी की अशात पर कलमी जंग के मुहर्रक दरअसल इकबाल का दिबाचा और हाफज से मुतल्लक अशार थे। मसनवी को सर सैयद अली इमाम के नाम पर ममनून किया जाना भी इतराज़ का सबब बना, लेकिन इसकी हसीयत सानवी थी। दिबाचे में इकबाल ने खुदी यानी एहसास नफस या तातयन ज़ात को वहदत वजदानी शऊर का रोशन नुकता पुर इसरार शय मुशहदात की खालक फितरत इंसानी की लातादाद मुंतशिर कफियतों की शिराजा बंद करार देते हुए लिखा कि मशरकी अकवाम इसे महज एक फरेब तखैल तसव्वुर करती है और इनके नज़दीक इस फंदे को गले से उतार देने का नाम निजात है। इस सिलसिले में हिंदू हुक्मा के फिक्र का महासल ये था कि इंसानी अना की मौजूदा कफियत व लवाजमात इसके गुज़िश्ता तरीके अमल का लाजमी नतीजा है। पस जब अना का तयन अमल से है तो इसके फंदे से निकलने का वाहिद तरीका तर्क अमल है। ये नतीजा फिक्र इनफरादी और इज्तमाई एतबार से नहायत ख़तरनाक था। सफ़ा नंबर 470 और इस बात का मुतकाजी था कि कोई ऐसी शख्सियत पैदा हो जो तर्क अमल का असल मफहूम वाज़े करे। इस मरहले पर श्री कृष्ण ने हिंदुओं की फलसफियाना रवायात पर तनकीद की और इस राज को अफशा किया कि तर्क अमल से मुराद तर्क कुल्ली नहीं, क्योंकि अमल फितरत का तकाजा है और इससे ज़िंदगी का इस्तेकाम है, बल्कि तर्क अमल से मुराद महज यह है कि अमल को तर्क किए बगैर अमल और इसके नतायज से वाबस्तगी पैदा ना हो। श्री कृष्ण के नुक्ते नज़र को श्री राम नोज ने भी अपनाया, लेकिन श्री शंकर ने तर्क अमल की इस तोजी को मंतकी एतबार से बातल करार देकर हिंदुओं को श्री कृष्ण की तजदीद फिक्र के समर से महरूम कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक इस्लामी भी इब्तदा एक ज़बरदस्त पैगाम अमल की सूरत में उभरी, अगरचा इसके नज़दीक अना एक मखलूक हस्ती है जो अमल से लाजवाल हो सकती है, मगर हिंदुओं और मुसलमानों की ज़हनी तारीख में एक अजीबो गरीब ममालसत यह है कि जिस नुक्ता नज़र से श्री शंकर ने गीता की तफसीर की, इसी नुक्ता नज़र से इबन अरबी ने कुरान मजीद की तफसीर की। नतीजा ये हुआ कि मसला वहदतुल वजूद इस्लामी तखील का एक लाइनिफिक जुज बन गया। करमानी और अराकी सलीम से बेहद मुतासर हुए और रफ्ता रफ्ता 14वीं सदी ईस्वी के तमाम अजमी शहरा इसी रंग में रंगे गए। इकबाल ने तहरीर किया मुख्तसर ये कि हिंदू हुक्मा ने मसला वहदतुल वजूद के असबाब में दिमाग को अपना मुखातब किया, मगर ईरानी शोरा ने इस मसले की तफसीर में ज़्यादा ख़तरनाक तरीका अख्तियार किया, यानी उन्होंने दिल को अपना अमाजगाह बनाया और इनकी हसीनो जमील नुक्ता अफरीनियों का आखिरकार ये नतीजा हुआ कि इस मसले ने अवाम तक पहुँच कर करीबन तमाम इस्लामी अकवाम को ज़ौके अमल से महरूम कर दिया। अगरचा मगरब के फ़लसफ़े जदीद की इब्तदा हॉलैंड के इसराइली फ़लसफ़ी के निज़ाम में वहदतुल वजूद से होती है, लेकिन मगरब की तबाय पर रंग अमल गालब था। मसला वहदतुल वजूद का यह तलिस्म जिसको राजियात के तरीक़े व इस्तदलाल से पुख्ता किया गया था देर तक कायम ना रह सकता था।